दिन भर। आज है 1 जुलाई, दिन सोमवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी।
बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या स्थिति है।
जम्मू के किश्तवाड़ जिले में खड्ड में गिरी बस, 35 लोगों की मौत। लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा में पहनावा देखने के बाद ही मिलेगी एंट्री। और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को नहीं पच रही विश्व कप में भारत की हार।
80% लोगों का यही ख्याल है कि वो जान के आ रहा है, मगर उनके हारने या ना हारने का बात नहीं है। बात ये कि हमने क्या करना है, हमें खुद जीतना चाहिए। हमें इस पे नहीं रहना चाहिए कि इंडिया अगर जीत जाता तो हम आगे जाते।
और होंगी आपकी चिट्ठियां भी, पर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच सूत्रों का दावा है कि ईरान ने पहली बार 2015 के परमाणु समझौते के तहत संवर्धित यूरेनियम जमा करने की तय सीमा का उल्लंघन किया है। समाचार एजेंसी फार्स ने अज्ञात सूत्र के हवाले से लिखा है कि ईरान ने 300 किलो से अधिक संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था AIAEA ने BBC को बताया कि उसके निरीक्षक वहां मौजूद हैं और वे यूरेनियम भंडार की खबर पर प्रमाणिकता के साथ रिपोर्ट देने वाले हैं। ईरान का यह कदम उन यूरोपीय देशों को नाराज कर सकता है जिन्होंने अमेरिका के समझौते से पीछे हटने के बावजूद समझौते पर प्रतिबद्धता जताई थी। हांगकांग में प्रदर्शनकारी लोहे की छड़ों से तोड़फोड़ करते हुए विधान परिषद की इमारत तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगारोधी पुलिस ने इमारत के भीतर उन्हें रोकने की कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और तीखे स्प्रे का इस्तेमाल किया था। सरकार के पक्षधर नेताओं ने कहा है कि ये अतिवादी हिंसक तत्व हैं जो समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हांगकांग में बीते कुछ समय से उस सरकारी योजना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं जिसके तहत हांगकांग से चीन में प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा। इस प्रस्ताव को निलंबित कर दिया गया है लेकिन वापस नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारी हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लाम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अहम प्रदर्शनकारियों में से एक नेथन लॉ ने कहा,
I think Karen's stepping down has always not been the most important demand, and we all understand that.
मुझे लगता है कि कैरी लाम का इस्तीफा सबसे अहम मांग नहीं है। हम सब जानते हैं कि समान मताधिकार के बिना जो भी नेता होगा वो चीन का चुना हुआ होगा, लेकिन अभी अगर वो कोई जवाबदेही दर्शाना चाहते हैं तो उन्हें दिखाना होगा कि सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। ये थे प्रदर्शनकारी नेथन लॉ के शब्द। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया है कि राजधानी काबुल में एक कार में हुए बम धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। धमाका उस इलाके में हुआ जहां रक्षा मंत्रालय के दफ्तर समेत कई सरकारी इमारतें हैं। अधिकारियों के मुताबिक धमाके के बाद इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2 बंदूकधारियों को मार दिया गया। घायलों में करीब 50 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले का निशाना रक्षा मंत्रालय की इमारत थी। यूरोपीय संघ के नेताओं की संगठन के मुख्य पदों को भरने की कोशिश नाकाम हो गई है। मंगलवार को वे ब्रसेल्स में फिर इस पर बैठक करके सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ताज़ा बातचीत में समूहों के बीच 5 प्रमुख पदों को लेकर काफ़ी तोलमोल हुआ। फ्रांस और जर्मनी चाहते हैं कि फ्रांस टिमरमंस यूरोपीय संघ के अध्यक्ष बने, लेकिन पोलैंड और हंगरी जैसे राष्ट्रवादी सरकारों ने इसका विरोध किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम कल भी बातचीत जारी रखेंगे। हम कल सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे और हमें भरोसा है कि अब हम सहमति बना लेंगे। मुझे ये भी लगता है कि आगे के लिए हमें ऐसी नाकामियों के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। ऐसी लंबी बैठकें जिनसे कुछ नहीं लगता हमारी विश्वसनीयता पर दाग लगाती हैं। ये थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आरोप लगाया है कि सजाए मौत की व्यवस्था वापस ना लाने का दबाव बनाकर यूरोपीय संघ श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी है कि अगर श्रीलंका सजाए मौत पर आगे बढ़ता है तो संघ की ओर से उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। पिछले हफ्ते सिरिसेना ने बताया था कि उन्होंने 4 ड्रग अपराधियों की मौत की सजा पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उन्होंने उनके नाम और सजाए मौत दिए जाने का दिन नहीं बताया था। BBC समाचार।
आज है 1 जुलाई सोमवार, दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट बीबीसी हिंदी पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य विषयों की चर्चा से पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड में खेले जा रहे विश्व कप में आज श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला हो रहा है। श्रीलंका ने जबरदस्त बल्लेबाजी कर वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 339 रन बनाने का लक्ष्य रखा है। मैच का ताजा हाल बताएंगे कार्यक्रम में आगे, पर पहले चर्चा बिहार की। बिहार में जून के महीनों में चर्चा मौसम की होती है, मानसून की होती है, मगर इस बार मौसम नहीं बस मौतों की चर्चा हुई। तपती गर्मी के लिए बदनाम जेठ के महीने में चमकी बुखार से 150 से ज्यादा बच्चे काल के गाल में समा गए। इसकी खबर सारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन धारण किए रहे। पहले तो उनकी खिंचाई हुई कि वो प्रभावित इलाके खासतौर से मुजफ्फरपुर नहीं गए, और जब गए तो मुंह नहीं खोला। मगर आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने चमकी बुखार पर लंबा भाषण दिया। क्या कहा उन्होंने ये जानने के लिए मैंने पटना में बीबीसी संवाददाता नीरज प्रियदर्शी से संपर्क किया।
जी अपूर्व, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में पहली बार चमकी बुखार को लेकर के बयान दिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री आलोचनाओं के शिकार होते रहे हैं क्योंकि उन्होंने चमकी बुखार इंसेफेलाइटिस पर हो रही बच्चों की मौत पर कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मुजफ्फरपुर का दौरा भी किया था, SKMCH अस्पताल का, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया था। आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार है वो सोई नहीं है, बहुत दिनों से इस बीमारी को लेकर के रिसर्च किया जा रहा है। 2015 की एक बैठक का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट एक अमेरिका भी भेजी गई है, अभी आगे भी इस पर रिसर्च करना जारी है। सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने।
अलग अलग व्यूज लोगों के थे, कोई ये कह रहा था कि इसका जो सरयू नदी में वो आ रहा है, गोरखपुर में भी ये घटना घटती थी, गोरखपुर में ही सबसे पहले होती थी, उसके बाद ये मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों में ये बात होती थी। तो उनका एक विचार था, दूसरे लोगों का कुछ और विचार था, अलग अलग विचार था। 3 घंटे तक हम बैठक में शामिल हुए थे और अंत में हमने यही अनुरोध किया था कि वे अलग अलग ओपिनियन, और मुझको उस समय बताया गया था कि इसके बारे में रिपोर्ट्स US भी भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गई, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे जो इलाज करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है और क्या स्थिति है।
जी नीरज, तो सुना हमने नीतीश कुमार को, वो कह रहे हैं कि सरकार सोई नहीं थी, सरकार इसको लेकर काफी सजग है, लेकिन क्या लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं या आलोचनाएं जिन बातों को लेकर हो रही थी वो अभी भी सवाल बरकरार हैं?
देखिए अपूर्व, मुख्यमंत्री की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सोई नहीं रही, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने इस पर लगातार कोशिश की, लेकिन ये बच्चों की मौत का सिलसिला अभी जब जो थमा नहीं है उसको लेकर के वो उन सारी बातों का भी जिक्र करते हैं कि जागरूकता नहीं फैलाई गई, अस्पतालों में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की कमी है। इन सब बातों के बाद भी वो एक मुकम्मल जवाब नहीं दे सके, क्योंकि इसके पहले जो विधानसभा की कार्यवाही आज की शुरू होने वाली थी तब विपक्षी दलों ने इसको लेकर के खूब जोरदार हंगामा किया था, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनके इस्तीफे के नारे लगाए गए RJD के सदस्यों द्वारा। हालांकि RJD के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के तेजस्वी यादव, वो आज विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिए जबकि सुबह ही पटना पहुंच चुके थे। वो एक महीने से बिहार की राजनीति से नदारद दिख रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो एकजुटता नहीं दिख पाई।
जी नीरज, और जहां पटना में विधानसभा के भीतर ये सब चल रहा है, उसके दूसरी तरफ जो प्रभावित इलाके हैं खासतौर से मुजफ्फरपुर, क्या स्थिति कुछ काबू में हुई है या मौतों का सिलसिला जारी है?
जी अपूर्व, आज जो मुख्यमंत्री जो विधानसभा की कार्यवाही हुई है उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक का अपडेट दिया था। उन्होंने 28 जून तक की चमकी बुखार के हुई जो मौतें हैं और जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनका अपडेट देते हुए कहा कि 154 मौतें अभी तक 28 जून तक हुई थी, लेकिन हमारी जो जानकारी मिली है वो परसों के अखबारों में छपी है, मुजफ्फरपुर के स्थानीय संस्करणों में, कि चमकी बुखार से उस दिन भी एक बच्चे की मौत हुई थी और उसके बाद नए मरीज भी आने नहीं थम रहे। हालांकि ये लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है कि जो मानसून है, मानसून की बारिश है वो होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि मौतों का सिलसिला है वो थम जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। हालांकि मरीज नए जरूर कम आ रहे हैं, इसका एक कारण ये हो सकता है कि सरकार के स्तर पर ब्लॉक लेवल तक और गांव स्तर पर कैंप लगाए गए हैं और वहीं पे मरीजों का उपचार कर दिया जा रहा है प्राथमिक स्तर पर।
पटना से ये थे नीरज प्रियदर्शी। उधर जम्मू में आज किश्तवाड़ जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह वहां यात्रियों से खचाखच भरी एक बस गहरे खड्ड में जा गिरी। पूरे ब्यौरे के साथ बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
दक्षिणी कश्मीर के हिमालयी जिला किश्तवाड़ में आज सवेरे खचाखच भरी यात्री बस पहाड़ी सड़क से खिसक कर गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 30 से ज्यादा यात्री मारे गए। जिला प्रशासन के अनुसार एक शिशु, ड्राइवर और 13 महिलाओं समेत कुल 35 यात्री मारे गए और 17 घायल हो गए। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा का कहना है कि यात्री बस ओवरलोड की वजह से नाले में गिर गई।
इसमें शक नहीं है कि ओवरलोडेड व्हीकल था, लेकिन वहां रोड जो है बिल्कुल ठीक रोड था, कोई कर्व वगैरह नहीं था वहां, तो मे बी मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से गाड़ी वहां नीचे नाले में चली।
मिस्टर राणा का कहना है कि घायलों में से 10 को हेलीकॉप्टर द्वारा जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया जबकि 7 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। किश्तवाड़ श्रीनगर से दक्षिण की ओर 300 किलोमीटर दूर हिमालयी क्षेत्र चनाब वैली का एक पहाड़ी जिला है। इस क्षेत्र में डोडा और भद्रवाह जिले भी हैं। चनाब घाटी में पिछले 30 वर्ष के दौरान हजारों लोग ऐसी ही घटनाओं में मारे गए। पिछले सप्ताह एक बस दुर्घटना में 9 लड़कियों समेत 11 छात्र मारे गए। आज मारे गए लोगों में से हर एक के परिवारजनों के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB के अनुसार जम्मू कश्मीर पूरे देश में उन 3 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। NCRB के अनुसार कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या उन लोगों से ज्यादा है जो हिंसक घटनाओं या मुठभेड़ों में मारे जाते हैं। ब्यूरो ने पिछले वर्ष जो सर्वे जारी किया था उसके अनुसार कश्मीर में 1000 लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और ये दुर्घटनाएं अधिकतम किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रजौरी और पुंछ के हिमालयी जिलों में घटती हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
6 हफ्तों के ग्रीष्म अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से कामकाज शुरू हुआ। इस बार उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के काम में तेजी आएगी। उसकी 2 वजह हैं। एक तो 5 साल बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे 31 जज मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर केसों के बंटवारे का एक नया रोस्टर लागू हुआ है। क्या फर्क पड़ेगा इससे, ये जानने के लिए मैंने अदालती मामलों को कवर करने वाले पत्रकार सुचित्र मोहंती से बात की।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले PIL की सुनवाई करते थे, लेकिन अभी जो नया रोस्टर सिस्टम लागू हुआ है, आज से लागू हो गया है, इसके साथ CBI के साथ और 4 जजेस जो सीनियर जजेस थे वो सुनवाई करेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप ये कह सकते हैं 5 जजेस जो है PIL की सुनवाई करेंगे, क्योंकि PIL की संख्या बढ़ गई है। इसी मद्देनजर शायद रोस्टर सिस्टम को ये लागू किया गया है कि CBI के साथ साथ और जो 4 जजेस सीनियर जजेस वो भी सुनवाई करेंगे। इसके अलावा और सारे जो केसेस थे जैसे कि इलेक्शन केसेस हो गया वगैरह वगैरह केसेस हो गया, उसकी सुनवाई के लिए भी रोस्टर सिस्टम लागू हुआ है और रोस्टर सिस्टम उनके असाइन किया गया है। जस्टिस जैसे बोबड़े और बाकी सारे जजेस को लागू किया गया है, उनको दिया गया है।
मतलब पहले जो व्यवस्था थी, पहले जो रोस्टर था, काम जो बंटवारा होता था पहले का, उसमें क्या दिक्कत थी?
कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जुडिशरी को ये लगा, जैसे जितने सारे जजेस थे व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जजेस थे, उनको लगा कि जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, चाहे वो PIL की हो, इलेक्शन पिटीशन हो, या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की कोई भी ग्रीवांसेस हो, पिटीशन हो, धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि पहली बार जब July 1 को आज समर्पण के बाद सुप्रीम कोर्ट आज खुला तो 31 जजेस थे, यानी कि पहले 31 जजेस का स्ट्रेंथ नहीं था। और ये कह सकते हैं कि 4-6 साल के बाद ये पहली बार जो कि 31 जजेस की स्ट्रेंथ के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने पूरी केसेस की सुनवाई कर रही है। तो अगर देखा जाए तो ये लिटिगेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है कि केसेस की सुनवाई जल्दी होगी।
और बताया जा रहा है कई बड़े केसेस हैं, उन पर फैसला किसी भी समय किसी भी दिन आ सकता है।
देखिए, आज जब सुनवाई शुरू हुआ तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद आ जाए, जिन 6 हफ्ते का समर वेकेशन था, लेकिन आज सुनवाई जैसे शुरू हुआ कुछ नहीं आया। बड़े बड़े केसेस से जजमेंट आने वाले हैं, उनमें से नंबर 1 है राफेल का रिव्यू। राफेल का रिव्यू 2018 में December 14 को डिसमिस किया था सुप्रीम कोर्ट की CBI की अगुवाई वाली बेंच में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फैसला अपना सुरक्षित रखा है सुनवाई के बाद, और इसकी किसी भी समय यानी कि आप July 2 तारीख से लेकर July 30 तारीख के बीच किसी भी दिन आ सकता है। इसके साथ ही राहुल गांधी का जो चौकीदार चोर है जाहिर वाला जो रिमांड था, वो भी जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ का मीनाक्षी लेखी द्वारा, तो उसके ऊपर भी फैसला आने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कभी भी फैसला आ सकता है। लेकिन हालांकि इस केस में राहुल गांधी ने अपना अनकंडीशनल अपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला अपना सुनाएगा कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसके ऊपर फैसला आने वाला है। तीसरी जो अहम केस है उसमें सबरीमाला मैटर है, आप सबको याद होगा सबरीमाला जो मंदिर है उसमें एंट्री को लेकर बहुत बवाल हुआ था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो एंट्री ऑफ ऑल वुमेन, सारे वुमेन जितने सारे एज ग्रुप के हैं सबको अलाउ कर देता है अंदर जाने के लिए, उसको लेके काफी सारे रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जो जितने सारे पेंडिंग केसेस और पिटीशन बाहर हाईकोर्ट में या फिर और कहीं फाइल हुआ है उसमें फैसला बिल्कुल नहीं आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, यानी कि जुलाई में किसी भी तारीख में ये फैसला आ सकता है।
अदालती मामलों को कवर करने वाले पत्रकार सुचित्र मोहंती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐतिहासिक जगह है भूल भुलैया यानी इमामबाड़ा, मगर सैलानियों के बीच लोकप्रिय स्थल पर प्रवेश के लिए प्रशासन कपड़ों को लेकर कुछ कायदे कानून लागू करने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं बीबीसी के उत्तर प्रदेश संवाददाता समीर आत्मज मिश्र।
लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और नवाबों की कई विरासतों में से एक प्रमुख है इमामबाड़ा। देश विदेश से तमाम पर्यटक यहां आते हैं और सोमवार को जब कुछ लोगों को नए दिशा निर्देश के तहत प्रवेश के लिए कहा गया तो उन्हें कुछ हैरानी हुई।
ये लिया भागी, सड़ाक लिए, सड़ाक के अंदर आपको आना है, सड़ाक लिए, आइए अंदर आइए।
एक दिन पहले ही लखनऊ जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के सुझाव पर तय किया कि इमामबाड़ा परिसर में पर्यटक शालीन वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करेंगे। डीएम कौशल राज शर्मा के मुताबिक यहां के सिक्योरिटी गार्डों को इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक इमामबाड़ा परिसर में अब प्रोफेशनल फोटोग्राफी और शूटिंग भी नहीं हो सकेगी। आज इमामबाड़ा परिसर में जब लोग पहुंचे तो तमाम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी।
मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूँ, हम लोग पहली बार लखनऊ आए हैं घूमने, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और यहाँ के गाइड ने बोला कि यहाँ पे हमें सर ढकते ही जाना है, तो हमें तो दोनों संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही है कि सर ढक के जब भी मंदिर में जाओ।
अगर ऐसा कुछ रूल अगर इन लोगों ने बनाया है तो इन लोगों को पहले फ्लैश करना चाहिए था ये चीज़ कि हाँ ऐसा रूल है, तो हम लोग घर से ही या तो वैसे कपड़े पहन करके आते हैं और नहीं तो फिर अगर यहाँ पे ऐसा नहीं अलाउड है, अगर कोई नहीं कंफर्टेबल है दुपट्टा ओढ़ने में सर से, तो ये लोग बाउंड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को।
अपने भगवान के सामने सर ढक सकते हैं क्या, दूसरे के सामने नहीं ढक सकते हैं, तो हमारा तो फर्ज है कि हाँ हम ढकना चाहिए। अपने अपने मजहब की अपनी अपनी वो होती है, तो सबके मजहब का पालन करना चाहिए था, तभी सब मिलके चल पाएंगे।
ये तो गलत चीज है ना, और डीएम के आदेश से क्या मतलब है यार, पब्लिक की फैसिलिटी के लिए प्रोग्राम, पर्यटन का हमसे पैसा लेकर के हमारा ही पर्यटन का जो मनी यूज करके हमारे लिए आदेश बनाए जा रहे हैं वो भी उलझुल।
इससे पहले साल 2014 में भी सिर ढक कर ही महिलाओं को बड़े और छोटे इमामबाड़े में प्रवेश करने का नियम लागू किया गया था और एक साल बाद शिया समुदाय के लंबे प्रतिरोध के बाद एक ड्रेस कोड तय करने के नियम बनाए गए थे। ये नियम कुछ दिनों तक तो चले लेकिन बाद में इनकी अनदेखी होने लगी। पिछले दिनों हुसैनाबाद ट्रस्ट के स्मारकों के संरक्षण की समीक्षा बैठक में डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि छोटे और बड़े इमामबाड़े में लोगों के अशोभनीय वस्त्र पहनकर आने की शिकायतें मिल रही थीं। इमामबाड़े के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस का कहना था,
यहाँ पे मतलब हाफ ड्रेस पहनकर और हाफ ड्रेस पहनकर और नंगे सर जाने के, अंदर इमामबाड़े का तो कोई चीज भी हो धार्मिक उसको एहतराम करना चाहिए। हाँ सब कोई भी मंदिर मस्जिद में कोई भी लेडीज जाती तो सर हमेशा ढक लेती है, तो मतलब कुछ लोगों ने तो कहना माना कि मैं मान लिया, कुछ लोग टूरिस्ट जिद्दी भी होती है, लड़ने भी लगती है, काफ़ी लोगों को समझाने के बाद उन्होंने मतलब सर ढके, हम लोगों ने स्टॉल दिए यहाँ पे जो लोग नहीं लेके आते थे और जो लोगों ने पर्स में भी रखे थे स्टॉल, तो हमने कहा अगर आपके पास आप ढक लीजिए और जो नहीं रहे तो मेरे से ले लीजिए।
ऐतिहासिक विरासतों में प्रवेश के लिए लखनऊ में इससे पहले भी कई बार इस तरह के नियम बने हैं, लेकिन अब प्रशासन की स्वीकृति भी इन नियमों को मिल गई है। अब देखना यह है कि ये नियम कितने स्थायी होते हैं और कितने दिन तक लोग इसका पालन करते हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय, आपकी राय के साथ आज मैं हूं पंकज प्रियदर्शी और मेरा साथ दे रही हैं
इंदु पांडे। मेरा नमस्कार है सबको।
बहुत बहुत बड़ी सी मुस्कान के साथ आप हाजिर हुई हैं।
सर आपको देख के आ गई।
चलिए अच्छी बात है, अब मेरी आप ज्यादा खिंचाई ना करें और पत्र पढ़ें।
तो ये जो पहली चिट्ठी हमारे पास आई है ये है ऋषिकेश गुप्त वाराणसी मंडल से, इन्होंने लिखा है, बहुत सारी तारीफ है और उसके बाद बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से विश्व समाचार पढ़ने वाली ससम्मानीय वाचिकाओं के लिए ये जानना और अभ्यास बताना बहुत जरूरी है कि समाचार वाचन के बीच उनका जोर जोर से सांस लेना दिमाग पे हथौड़े बरसाता है, तो जो लोग यहाँ पे समाचार पढ़ते हैं कृपया इस बात का ध्यान रखें।
बिल्कुल आपकी सलाह, आपकी राय सर माथे पर, और बिल्कुल आपने सही कहा, रेडियो प्रसारण ही ऐसा माध्यम है कि जिसमें सांस जो है एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक शक्ति भी होती है, और कई बार अगर आप ख़राब से बोलें और बीच बीच में लंबी लंबी सांसें लें तो वो बहुत ही बुरा लगता है इंदु। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जो अपने नए साथी हैं अभी बहुत नए हैं, अभी वो सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो उन तक आपकी ये राय आपकी सलाह ज़रूर पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहिए, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए।
और ये मेल आया है हमारे पास बड़ी दूर से, भेजने वाले का नाम है सादिक आज़मी और सऊदी अरब से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। कहते हैं कि कार्यक्रम सुनने के साथ साथ आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे अचंभित करने वाले लेख पढ़ने को मिल जाते हैं कि जिसको पूरा पढ़े बगैर हम रह नहीं पाते और धन्यवाद दिए बगैर भी हम नहीं रह सकते। तो इनका कहना है कि अभी मानव शरीर और हड्डियों के लगातार कमजोर होने के कारण जो शोध की विस्तृत समीक्षा की गई थी बहुत अच्छी लगी, और लोगों को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम बताया आपने? सादिक आज़मी साहब,
सऊदी अरब से।
सऊदी अरब से, बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार वेबसाइट पे हमारी इतनी सारगर्भित और विश्लेषणात्मक खबरें होती हैं, कई बार हम खबरों के पीछे जाके उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें कुछ हेल्थ से जुड़ी खबरें होती हैं, कुछ आपके रोजगार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, साथ में कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी होती है समीक्षा। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारी कोशिश सफल हो रही है। इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिएगा और वेबसाइट पर भी नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये मेल है मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से, इन्होंने भेजा है। लिखते हैं कि नवीन नेगी का G20 का परिचय, वसुतुल्ला खां की पाक डायरी, गोवलकर पर रेहान जी की विवेचना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और साथ में इन्होंने लिखा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सर छोटू राम पर विवेचना नहीं सुनवाई आपने।
बिल्कुल आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे, और जहाँ तक रेहान साहब की विवेचना की बात है तो इंदु पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि शायद ही कोई पत्र मिला कार्यक्रम और आपकी राय जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें रेहान साहब की बात ना आए तो ये असंभव सी बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में नवीन नेगी की भी बात आपने की और वसत साहब की डायरी, तो इंदु उसने एक खास जगह बना ली है लोगों के बीच में, श्रोताओं के बीच में। वो पाकिस्तान से डायरी भेजते हैं, उनका अंदाज़ अनोखा है और वो अनोखा अंदाज लोगों को बहुत ही पसंद आता है, और हम सफल हो रहे हैं इसमें।
गौतम दत्ता हैं किशनगंज बिहार से, लिखते हैं कि इंडिया बोल का विषय इस बार एक देश एक चुनाव अच्छा लगा, आपकी टीम ने इसका संचालन बहुत अच्छे से किया, वर्तमान समय में देश की तेज गति से वृद्धि के लिए एकदम जरूरी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के खेल पर वसीतुल्ला खान साहब की डायरी बहुत अच्छी लगी, आदेश कुमार गुप्त जी भी बहुत अच्छा खेल समाचार देते हैं, इनका कहना है।
गौतम दत्ता हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत नजर भी रखते हैं हमारी वेबसाइट पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश्व कप चल रहा है और उसमें वसत साहब की डायरी का जो अभी हमने चर्चा भी की, जो अंदाज रहता है, और उसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, आखिरी ओवर तक गया था इंदु, और बहुत ही रोमांचक स्थिति में था, और एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम हार जाएगी, और अगर पाकिस्तान की टीम हार जाती तो सेमीफाइनल का रास्ता उसका मुश्किल हो जाता, तो लोगों को पसंद आया। और आदेश जी तो हमारे खेल के ज्ञाता हैं, और आपको अभी जब हमारे क्या कहते हैं IPL चल रहे थे तो वो नियमित कर रहे थे, अभी विश्व कप चल रहे हैं और वैसे भी वो खेल के समाचार देते रहते हैं, तो आदेश जी की मेहनत भी सफल हुई।
बिल्कुल। अच्छा, दो चिट्ठियां मैं एक साथ पढ़ूंगी, वो इसलिए क्योंकि दोनों ने मतलब एक ही बात बोली है। पहली मेल है सुमन किशोर की, कहते हैं कि आप ना जो समाचार अपने वेबसाइट पे छापते हैं वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो उनको जल्दी जल्दी जितने भी सेक्शन है अपडेट किया कीजिए। और दूसरा हमारे पास मेल भेजा है इन्होंने M. सैयद मंसूरी का, ये कहते हैं कि भाई आपने ज़ायरा वसीम को लेकर के BBC ने सबसे पहले न्यूज दी, बहुत अच्छा लगा, अब जवाब बताइए।
हाँ, सुमन किशोर जी की भी बात भी सही है और मंसूरी साहब की भी बात सही है। देखिए, कई बार होता है कि BBC पर ये आरोप लगते हैं कि आप उस तरह तेजी से खबरें नहीं दिखा पाते हैं, तो सच बताए सुमन किशोर जी कि हम उस होड़ में नहीं है जो तथाकथित ब्रेकिंग न्यूज की होड़ है, उसमें हम नहीं है। हम कोशिश जरूर करते हैं कि जिस तरह की खबरें हम अपने श्रोताओं तक, हम अपने दर्शकों तक, हम अपने पाठकों तक पहुंचाना जरूरी होता है, उसे हम पहुंचाते हैं। कई बार यहां पर हर छोटी चीजें भी खबर बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज की श्रेणी में आ जाती है, तो हमारा पैमाना कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं हैं कि उसमें बने रहें, और साथ में ये भी कोशिश होती है हमारी कि अगर कोई खबर आ गई, हमसे छूट गई, तो उस खबर का विश्लेषण करें, उसके उन पहलुओं पर आप लोगों का ध्यान ले जाएं जहां पे शायद कोई और मीडिया हाउस, कोई अन्य समाचार संगठन उस बात को न उठा रहा हो।
और फारूक अब्दुल्ला फिजा लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण से कहते हैं कि जो खेल समाचार पढ़ने का ढंग है आदेश जी का, बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं।
आज तो आदेश जी की जय जय ही हो रही है, तो हम भी साथ में यही बोलेंगे कि उनकी जय हो और इस तरह वो कार्यक्रम पेश करते रहेंगे आगे भी। तो
अब पता बता दें?
बिल्कुल, तो चलते चलते हमारा पता नोट कर लीजिए। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब समय है खेल समाचारों का। विश्व कप के आज के मैच की चर्चा होगी, पर उससे पहले ये सुनते हैं कल बर्मिंघम में इंग्लैंड के हाथों भारत की हार को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी क्या कह रहे हैं। इंग्लैंड की जीत ने पाकिस्तान के लिए विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने का रास्ता मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान में बीबीसी संवाददाता फाखिर मुनीर ने मैच के बाद आम लोगों से प्रतिक्रिया मांगी।
इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, क्योंकि सुल्तान को वही हरा सकता है, खुद को सुल्तान खुद को हरा सकता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता।
80% लोगों का यही ख्याल है कि वो जान के हारा, मगर उनके हारने या ना हारने का बात नहीं है, बात ये कि हमने क्या करना है, हमें खुद जीतना चाहिए, हमें इस पे नहीं रहना चाहिए कि इंडिया अगर जीत जाता तो हम आगे जाते।
ये तो आपको पता है इंडिया हमारा बड़ा पक्का दोस्त है हमारा, वो किधर पाकिस्तान को आगे जाने देते हैं, वो तो इंग्लैंड के 400 स्कोर ही बना लेते इंडिया जीत जाता, वो जान के कल आ रहे हैं, आप बैटिंग नहीं देख रहे थे।
लग तो ऐसा रहा है कि जानबूझ के आ रहे हैं, लेकिन गेम है, गेम में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, हार जीत होती है, लेकिन यह है कि हमारी टीम के साथ हमारी दुआएं हैं, विशेज हैं कि आगे चांस है, हो सकता है कि आगे पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँच जाए।
इंशाल्लाह जीतेंगे, चैंपियन ट्रॉफी में हम जीते थे ना फाइनल में, इंशाल्लाह आप भी जीतेंगे। पहला मैच हार गए हैं, दूसरा अगर इंडिया के साथ आएगा तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह।
और अब खेल समाचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं इंदु पांडे। इंदु जी,
तो शुरुआत करते हैं, आज जो मैच हो रहा है थोड़ा सा तो आपने बता दिया था, वेस्टइंडीज़ ने आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी, हालांकि वेस्टइंडीज़ टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो वहीं श्रीलंका की टीम आज अगर जीत जाती है तो आखिरी चार के लिए क्वालिफाई करने की जो धुंधली हो रही उसकी उम्मीद है वो किसी तरह से बरकरार रह सकती है, और इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज़ के लिए खोने को कुछ भी नहीं है। तो आज के इस मैच पे फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर विजय धैया क्या कहते हैं?
जी हाँ, वैसे अगर आप देखें तो पॉइंटों की कोई लड़ाई है नहीं, दोनों टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि श्रीलंका एक नज़र फ्यूचर पे जरूर रखेगी, ये टीम ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ वो जाएगी, वो रन बनाए। उसी तरह वेस्टइंडीज, मुझे लगता है कि एक बार फिर से उनकी कोशिश रहेगी, वो भी उसी पड़ाव पे है, श्रीलंका के पास कुछ ज्यादा पाने को है।
तो इंग्लैंड में अभी जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा है उसमें अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जो चोटिल होने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन विश्व कप से बाहर हुए, तो अब टीम के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे ऑलराउंडर विजय शंकर चोटिल हो गए हैं, और भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर पाँव के अंगूठे में चोट लगने की वजह से विश्व कप से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को टीम में रखा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और इस हफ्ते टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे। भारत को अभी दो मुकाबले और खेलने हैं, जिसमें से उसे दो, यानी कि कल बांग्लादेश से और 6 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ उसे अपना मैच खेलना है। शंकर दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो चोटिल होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जैसा आप जानते हैं शिखर धवन बाहर हुए थे, और सोशल मीडिया पर हालाँकि काफ़ी सारी चर्चाएँ हो रही हैं इस बात को लेकर। टेनिस की दुनिया का जो सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है वो आज से शुरू हो गया है, और इसे सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट भी माना जाता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस बार पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शीर्ष वरीयता दी गई है। 32 साल के नोवाक जोकोविच पिछले साल के चैंपियन भी हैं। जाहिर है वो विंबलडन के घास वाले कोर्ट पे अपना खिताब बताने के लिए ज़रूर उतरेंगे।
जी इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विंबलडन आज से शुरू हो चुका है, तो इस पर भी लगातार चर्चा बनी रहेगी, पूरा खेल से भरा हुआ है ये महीना लगता है इंदु जी।
बिल्कुल,
और बताते चलें अभी स्कोरिंग, जो अभी मैच चल रहा है वेस्टइंडीज और श्रीलंका का, लगता है कि वेस्टइंडीज की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। 5 ओवर में 22 रन और 2 विकेट उसके गिर चुके हैं, स्कोर उनको तय करना है, मंजिल है उनकी 339 रन। और अब सभा समापन का समय आ चुका है, सुनते हैं मुख्य समाचार।
अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच सूत्रों का दावा है कि ईरान ने पहली बार 2015 के परमाणु समझौते के तहत संवर्धित यूरेनियम जमा करने की तय सीमा का उल्लंघन किया है। हांगकांग में प्रदर्शनकारी लोहे की छड़ों से तोड़फोड़ करते हुए विधान परिषद की इमारत तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगारोधी पुलिस ने इमारत के भीतर उन्हें रोकने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया है कि राजधानी काबुल में एक कार में हुए बम धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। धमाका उस इलाके में हुआ जहां रक्षा मंत्रालय के दफ्तर समेत कई सरकारी इमारतें हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आरोप लगाया है कि सजाए मौत की व्यवस्था वापस न लाने का दबाव बनाकर यूरोपीय संघ श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। बीबीसी समाचार।
सरप्रिया सांगवान सुना रही थी मुख्य समाचार। तो दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक भाटिया ने। अब सभी साथियों के साथ मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।